एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तो बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह के शीघ्र वापसी के चिन्ह। पवित्र शास्त्र न केवल मसीह के आने के तरीके और उद्देश्य को प्रकट करता है, वह उन चिन्हों का भी वर्णन करता है जो इस चरमोत्कर्ष घटना की निकटता के बारे में बताते हैं। दूसरे आगमन की घोषणा करने वाले पहले चिन्ह मसीह के स्वर्गारोहण के 1700 से भी अधिक वर्षों पश्चात हुए थे और अन्य उसके बाद आते रहे। इस प्रमाण में योगदान करते हुए कि उसकी वापसी बहुत निकट है। प्राकृतिक दुनिया में हम चिन्ह देख पाते हैं। मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, लूका 21:25। यह स्पष्ट करते हुए कि उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, मरकुस 13:24-26। इसके अतिरिक्त यहूना ने देखा कि आकाश में चिन्हों से पहले एक बड़ा भूकंप आएगा, प्रकाशित वाक्य 6:12। यह सभी चिन्ह 1260 वर्षों के उत्पीड़न के अंत को चिन्हित करते हैं। पहला हम देखेंगे पृथ्वी की गवाही। इस भविष्यवाणी की पूर्णता में सबसे विशाल ज्ञात भूकंप 1 नवंबर 1755 में आया। लिस्बन भूकंप के नाम से जाना जाने वाला इस भूकंप के प्रभाव यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में देखे गए, जो लगभग 40 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है। इसका विनाश पुर्तगाल के लिस्बन में केंद्रित था, जहां कुछ ही मिनटों में सार्वजनिक व आवासीय इमारतें ढह गईं, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई। जबकि भूकंप के भौतिक प्रभाव बड़े थे, उस समय के विचार पर इसका प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण था। उस समय के अनेक जीवित लोगों ने इसे अंत के भविष्य सूचक चिन्ह के रूप में पहचाना और परमेश्वर के न्याय और अंत के दिनों पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। लिस्बन भूकंप ने भविष्यवाणी के अध्ययन को प्रेरणा दी। दूसरा हम पाते हैं सूरज और चंद्रमा की गवाही। 25 वर्ष पश्चात भविष्यवाणी में उल्लेखित अगला चिन्ह हुआ सूरज व चंद्रमा का काला पड़ना। मसीह ने इस चिन्ह के पूर्ण होने के समय को इंगित करते हुए यह कहा था कि यह उस महान क्लेश के पश्चात होगा 1260 वर्षों की कैथलिक कलीसिया द्वारा उत्पीड़न के बाद, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में कहीं और बात की गई है, मत्ती 24:29 देखें। परंतु मसीह ने कहा कि इन चिन्हों के पहले आने वाला क्लेश घटा दिया जाएगा, मत्ती 24:21-22। सुधार के प्रभाव और इससे पैदा हुए आंदोलनों के माध्यम से कैथलिक कलीसिया द्वारा उत्पीड़न को वास्तव में कम कर दिया गया था और इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस भविष्यवाणी की पूर्ति में मई 1780 को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर एक असाधारण अंधेरा छा गया। इस घटना को याद करते हुए एल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तिमोथी ड्वाइट ने कहा, 19 मई 1780 का दिन एक उल्लेखनीय दिन था। अनेक घरों में मोमबत्तियां जलाई गईं, पक्षी भी शांत व गायब हो गए और मुर्गे मुर्गियां भी अपने बसेरों को लौट गए। एक अति सामान्य राय प्रबल हुई कि न्याय का दिन बिल्कुल निकट है। हवार्ड के सैमुअल विल्सिंग्स ने सूचना दी कि अंधेरा दक्षिण पश्चिम की ओर से बादलों के साथ सुबह 10 बजे और 11 बजे के बीच आया और अगले दिन की मध्य रात्रि तक विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समयावधि वह मात्रा में जारी रहा। कुछ स्थानों में तो लोग खुले स्थानों पर साधारण छपाई को भी नहीं पढ़ पा रहे थे। सैमुएल टेनी की राय में अगली शाम का अंधेरा शायद उतना ही घोर था जितना कभी देखा गया है, जब से सर्वशक्तिमान की आज्ञा ने रोशनी को जन्म दिया है। यदि ब्राह्मण की प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु को अवैध छाया में छिपा दिया जाए या अस्तित्व से बाहर कर दिया जाए, वह अंधकार अधिक पूर्ण नहीं हो सकता था। उस रात 9 बजे एक पूर्ण चांद निकला, परंतु अंधेरा मध्य रात्रि पश्चात तक छाया रहा। जब चंद्रमा दिखाई दिया तो उसका आभास रक्त के समान था। यहूना भविष्यवक्ता ने उस दिन की असाधारण घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। भूकंप के पश्चात उसने लिखा, सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, प्रकाशित वाक्य 6:12। तीसरा है तारों की गवाही। मसीह एवं यहूना दोनों ने तारों के गिरने के विषय में कहा था, जो यह संकेत देगा कि मसीह का आना निकट है, प्रकाशित वाक्य 6:13, मत्ती 24:29। 13 नवंबर 1833 की महान उल्कापिंड पछौर व्यापक रूप से सितारों के गिरने का दर्ज प्रदर्शन ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक पर्यवेक्षक प्रति घंटे औसतन 60,000 उल्कापिंड देख सकता था। इसे कनाडा से मेक्सिको तक और मध्य अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक देखा गया था। कई मसीहों ने इसमें बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति को पहचाना। मसीह ने यह सब चिन्ह मसीहों को अपने आगमन की निकटता के प्रति सचेत करने के लिए दिए, ताकि वे अपनी अपेक्षा में आनंदित हो सके और इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके। जब यह बातें होने लगे, यीशु ने कहा तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। आगे यह कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जब ही उनमें कोपले निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम यह बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लूका 21:28-31। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा व तारों की इस अद्वितीय गवाही ने, जो सही अनुक्रम में आई और जिस समय की मसीह ने भविष्यवाणी की थी, दूसरे आगमन की भविष्यवाणियों की ओर बहुतों का ध्यान आकर्षित किया। अब हम धार्मिक जगत में चिन्ह के बारे में बातें करेंगे। पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी करता है कि धार्मिक दुनिया में कई महत्वपूर्ण संकेत मसीह की वापसी से ठीक पहले के समय को चिन्हित करेंगे। पहला, एक महान धार्मिक जागृति। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरे आगमन से पहले एक महान विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन के उदय को प्रकट करती है। यहूना के दर्शन में एक स्वर्गदूत द्वारा मसीह की वापसी की घोषणा इस आंदोलन का प्रतीक है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14:6-7। दूसरे आगमन पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया भर में आगमन की आशा जागृत हुई। दूसरा है सुसमाचार का प्रचार। परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, प्रेरितों के काम 17:31। उस दिन के बारे में हमें चेतावनी देते हुए मसीह ने यह नहीं कहा कि वह दिन तब आएगा जब समस्त संसार परिवर्तित हो जाएगा, परंतु यह कि यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14। इस प्रकार पत्रस विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है परमेश्वर के उस दिन की बाट जोने व उसके जल्द आने के लिए यत्न करना चाहिए। दूसरा पत्रस 3:12। आज हम देखेंगे तो सुसमाचार का प्रचार, प्रवीषु का सनातन सुसमाचार का प्रचार दुनिया के अनेकों देश में कोने कोने तक हो रहा है। प्रचारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक बहुत सारे देशों में फैलाया जा रहा है। आगे हम देखते हैं धार्मिक पतन। तीसरा है सुसमाचार की व्यापक घोषणा का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वास्तविक मसीह धर्म की बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। इसके बजाय पवित्र शास्त्र समय के अंत में सच्ची आध्यात्मिकता के पतन की भविष्यवाणी करता है। पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यह लिखा है, यह हम पढ़ते हैं 2 तीमोथियस 3:1-5 में। इसलिए आज स्वप्रेम, भौतिक वस्तुओं और संसार के प्रेम ने कई हृदयों में मसीह की आत्मा को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब लोग परमेश्वर के सिद्धांतों और उसकी व्यवस्थाओं को अपने जीवन को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देते हैं। अराजकता ने कब्जा कर लिया है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, कहा गया था मत्ती 24:12 में। चौथा हम देखते हैं पोप के राज्य का पुनरुत्थान। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार 1260 वर्ष के अंत में पोप के राज्य को एक प्राणघातक घाव लगेगा जो भर जाएगा। पोप के राज्य को प्रभाव व सम्मान के महान नवीनीकरण का अनुभव प्राप्त होगा और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:3। पहले से ही आज अनेक लोग पोप को संसार के नैतिक नेता के रूप में देखते हैं। काफी हद तक पोप के राज्य का बढ़ता हुआ प्रभाव इसलिए आया है क्योंकि मसीहों ने बाइबल के आधिकारिक स्थान पर परंपराओं, मानवीय आदर्शों और विज्ञान को परिस्थापित कर दिया है। ऐसा करने से वे अधर्मी के प्रति संवेदनशील हो गए हैं जो सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ कार्य करता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। शैतान व उसके माध्यम दुष्टता का एक संग बनाएंगे जो अजगर, पशु या झूठे भविष्यवक्ता के अपवित्र त्रिएक का प्रतीक है जो संसार को धोखा देगा। प्रकाशित वाक्य 16:13-14। तुलना करें 13:13 से। केवल वे जिनका मार्गदर्शक बाइबल है एवं वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, प्रकाशित वाक्य 14:12 इस संघ द्वारा लाए गए भारी धोखे का सफलतापूर्वक विरोध कर सकते हैं। 5वां हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का पतन। पोप के राज्य का पुनर्स्थान मसीह धर्म को नाटकीय रूप से प्रभावित करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो कलीसिया एवं राज्य के बीच विभाजन की गारंटी के साथ बड़ी कीमत पर प्राप्त हुई नष्ट हो जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी। शक्तिशाली नागरिक सरकारों के समर्थन से यह धर्म त्यागी शक्ति सभी लोगों पर अपनी उपासना के रूप को थोपने का प्रयास करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के प्रति निष्ठा या पशु और उसकी छवि के प्रति निष्ठा के बीच चयन करना होगा। प्रकाशित वाक्य 14:6-12। इसके अनुसार चलने के दबाव में आर्थिक अवपीड़न शामिल होगा कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। प्रकाशित वाक्य 13:17। अंत में जो लोग इसके साथ चलने से इनकार करेंगे उन्हें मृत्यु की सजा का सामना करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13:15। संकट के इस अंतिम समय के दौरान परमेश्वर अपने लोगों के लिए हस्तक्षेप करेगा और उन सभी को बचाएगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जैसा कि हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक का 12:1 में। इसे हम तुलना कर सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3:5-20:15 से। फिर दुष्टता का बढ़ना होगा। मसीह धर्म के भीतर आध्यात्मिक गिरावट अराजकता के मनुष्य के पुनरुत्थान ने विश्वासियों के जीवन में वह कलीसिया में परमेश्वर की व्यवस्था की उपेक्षा को बढ़ाया है। बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि मसीह ने व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और मसीह अब इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था की इस अवहेलना के कारण अपराध और अनैतिकता व्यवहार में वृद्धि हुई है। पहला हम देखते हैं विश्व अपराध में बढ़त हुई है। अधिकांश मसीही धर्म में मौजूद परमेश्वर की व्यवस्था के अनादर ने आधुनिक समाज में कानून और व्यवस्था की अवमानना में योगदान दिया है। संपूर्ण विश्व में अपराध नियंत्रण से बाहर आकाश छू रहा है। कई विश्व राजधानियों के संवाददाताओं द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के समान संपूर्ण विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। दूसरा है यौन क्रांति। परमेश्वर की व्यवस्था की अवहेलना ने शालीनता और पवित्रता के बंधनों को भी तोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अनैतिकता का उदय हुआ है। आज यौन संबंधों को फिल्मों, टेलीविजन, वीडियो, गानों, पत्रिकाओं व विज्ञापनों के माध्यम से आदर्श माना जाता है व बेचा जाता है। यौन क्रांति के परिणाम स्वरूप तलाक की दर, खुली शादी या साथी की अदला बदली, बच्चों का यौन शोषण, गर्भपात की एक भयावह संख्या, व्यापक समलैंगिकता और समलिंग कामुकता, यौन रोगों की महामारी और हाल ही में सामने आई एड्स की बीमारी में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। हम देखते हैं आगे और चिन्ह युद्ध और आपदाएं। अपनी वापसी से पूर्व यीशु ने कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूका 21:10-11। तुलना करें मरकुस 13:7-8 तथा मत्ती 24:7। जैसे जैसे अंत निकट आएगा शैतानी और दिव्य शक्तियों के बीच संघर्ष तेज होगा। ये आपदाएं भी तीव्रता और आवृत्ति में तेज होंगी और हमारे समय में एक अभूतपूर्ण पूर्ति पाएंगी। इसमें हम पहला देखते हैं युद्ध। हालांकि युद्धों ने पूरे इतिहास में मानवता को त्रस्त किया है, लेकिन वे इतने वैश्विक और इतने विनाशकारी पहले कभी नहीं थे। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के वर्षों में आपदाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल ही में एक के बाद एक आने वाली पृथ्वी व मौसम के प्रलयों ने सोचने पर मजबूर किया है कि कहीं प्रकृति क्रोधित तो नहीं हो गई है और क्या दुनिया जलवायु और संरचना में गहरा परिवर्तन अनुभव कर रही है जो भविष्य में और भी बढ़ सकते हैं। तीसरा हम इसमें देखते हैं अकाल। पहले भी अनेक बार अकाल पड़ चुके हैं, लेकिन वे उस पैमाने पर नहीं हुए हैं जिस पैमाने पर इस सदी में हुए हैं। दुनिया में इससे पहले कभी भी लाखों लोग भुखमरी या कुपोषण से पीड़ित नहीं हुए थे। भविष्य के लिए संभावनाएं शायद ही उज्जवल हैं। भुखमरी और अभूतपूर्व सीमा स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि मसीह की वापसी निकट है। आज हम कहते हैं हमारा दुनिया विकास कर रहा है, लोग विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये सब आपदाएं, ये सब समस्याएं हमें बताते हैं कि मनुष्य का समस्या कम नहीं हुए, लेकिन बहुत से लोग भुखमरे हैं और कुपोषण के पीड़ित हैं। समस्या और भी अधिक दिखाई पड़ती है, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर जा रही है। हमें यह महसूस करना है कि यीशु मसीह का कहा हुआ बात पूरा हो रहा है, उसका आने का समय निकट है। ये सब हम लोग को दर्शाते हैं कि ख्रिस्ट हमारा मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। ये सारे चीज हम पहले भी देखते थे, लेकिन आज बहुत अधिक पैमाने में हो रहे हैं। हम लोगों को ध्यान देना है, सचेत रहना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमारे आंखें ऊपर की ओर उठाना चाहिए और उसके आने के लिए अपने आप को शीघ्र तैयार करना चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए और परमेश्वर से जोड़ लेना चाहिए। परमेश्वर के आने के लिए पूर्ण रूप से हमें तैयार होना चाहिए। आइए हम उसके लिए तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के निमित्त आते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें बताया है कि तेरा आने का समय निकट है। जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिए थे उसके दूसरे आगमन का, वह सब हम पूरा होते हुए देखते हैं। पिता, हमारे मन को तो छू और पवित्र आत्मा से भर दे कि हम तेरे तरफ ऊपर देखें और अपने जीवन को तेरे शक्ति से तैयार कर पाए।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।